आज देश रूहानी शासन लिए गुरु साहबा ने जो शब्द बख्शिश किया है वो है मिलन। ये मिलन शब्द की है। इस संसार दे विच क्या जड़ क्या चेतन, जिसले एक वस्तु दूसरी वस्तु दे विच थोड़ी या अधिक मात्रा दे विच समांदी है उसनू असी मिलना कहंदे हां। इस सृष्टि दे विच पांच तत्व और तीन गुण इन्हां दी जमा घटा करके इस सृष्टि की रचना की गई है और यह सृष्टि इतनी विशाल है कि इसनू असी गिनती दे राही जान नहीं सकते। उस परमात्मा ने अनगिनत ब्रह्मांड जो हैं रचे हैं और यह सारी रचना रच करके इसनू चलाने लई बहुत सारी ईश्वरी ताकत दे करके काल पुरुष और सत पुरुष के अधीन इसनू सौंप रखा है। सब तो पहला उस अनामी ने, उस अनंत ने, उस अलख ने, उस आगामी ने जो अपने आप दे विच लीन है, अपनी मौज दे विच मस्त है, जदों अहंकारा भरिया एक आवाज होई, वो आवाज ओम नाल मिलदी जुलदी सी। इस आवाज दे नाल इस सृष्टि की रचना की गई। इस आवाज नूं असी शब्दा दे राही या होर किसी भी भाषा दे राही या शरीर दे किसी अंग दे राही जान नहीं सकते। इस नूं असी सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा जो परमात्मा दा अंश है, उस समुंदर दी बूंद है, उस नूं असी कठा करके सिर्फ महसूस कर सकते हां। तो सब तो पहला इस आवाज तो सतपुरुष की गणना की गई। सतपुरुष की एक नकल बनाई गई जिसनों असी काल पुरुष कहते हैं। असल सत है, नकल काल है। सत का जो लोक है, वैसे तो सारे ही ब्रह्मांड जड़े ने वह सत के अधीन हैं, पर वह भी अपनी मौज के मस्त है। उसने सारी जो समर्था ताकत दे करके काल पुरुष नू इन त्रिलोकी दे राज दा कारी बनाया है। इस दे विच जानन वाली गल यह है कि उस काल पुरुष ने उस अनामी तो इस रचना नू चलाने लई तीन वार लए हैं। पहला वार यह है कि कर्म का जो नियम है, किसी भी जीवात्मा नू अपने कर्मा का ज्ञान ना रवे। दूसरा, इस जीवात्मा नू जिस भी चोले दे अंदर मैं रोकां वो आत्मा उत्थे प्रसन्न रवे। तीसरा, कि संत सतगुरु जो आंदे हन, क्यों? क्योंकि कुछ जीवात्मा ने एतराज कीता सी इन्हां लोकां दे विच जाण वास्ते। उस वेले उस अनामी ने यह वर दिता सी कि अगर तुसी विछड़ना नहीं चाहते, इस सहज अवस्था तो अलग होना नहीं चाहते, इन भोग विलास की अवस्था दे विच लीन नहीं होना चाहते, असी तुहानू आवाज मारांगे, तुसी उस आवाज नू सुन करके उहदे पिछे चल करके वापस साडे विच आ करके समा जाओगे। सो वह आवाज जो है जिसनू असी परमात्मा की आवाज कहंदे हां, वह एक ज्योत स्वरूप है। तो इसी करके इन्हां जीवात्मा नू प्रवाहण लई रोकण लई काल ने जो तीसरा वार लिया वह यह सी कि जदों भी संत आण वह अपनी समर्था या ताकत का प्रदर्शन नहीं करनगे। ये तीन वार लै करके उस काल पुरुष ने तीन लोग, एक लोग ते जड़ है यानी कि स्थूल लोग जिसनू असी मात लोग भी कहंदे हां, जिथे असी इस वक्त बैठे हुए हां, दूसरा है सूक्ष्म लोग, तीसरा है कारण लोग। ये तिना का स्वामी वो काल पुरुष ताकत लै रहा है सत पुरुष कोलों और नियम है आवागमन का 84 लाख पिंजरे बनाए ने और उन्होंने कर्मा का जो है कानून बना करके उसने इस जीवात्मा नू एटोमैटिक तरीके दे नाल इदे विच रोक रखिया है। वह एक थानेदार है, उन्हूं दोष देने का कोई लाभ नहीं। जिस तरह असी इस मुल्क दे विच देखते हां कि एक थाना बनाया जाता है ते थानेदार कोलो डर किसनू लगता है? जड़ा चोरी करता है, झूठ बोलता है, गलत कर्म करता है, वह हमेशा थानेदार कोलो दूर होकर के लंघेगा। क्यों? क्योंकि उसनू अपने कर्मा का डर है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਟਲ ਔਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਮਹਾਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਦ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਦ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜ ਜੋ ਹੈ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਈਡ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ, ਮਹਾਕਾਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਕਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਹਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਗੀ ਜੂਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਖਮ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਮਨ ਸੂਖਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲਈ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਰਿੰਦੇ ਮਨ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੀਵਾਣੂ ਜੋ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, तो उस वेले जिसले चित्रगुप्त रिजल्ट देगा ना, वो रिजल्ट इतना भयानक होगा कि असि भुगतान दे दो ढाई घंटे की करना है, कई गुणा ऐसा उधार असी कर दिता है जिदा भुगतान करने लई इस जीवात्मा नू कई करोड़ जन्म लेने पैणगे। इस तो तुसी विचार कर लो कि ए जीवात्मा दा आत्मा दे परमात्मा दे नाल मिलन दा जो मजबून है वो इतना सस्ता और आसान नहीं है कि अमृत दा बाटा तैयार किया है जी तुसी फलाने टाइम जा करके छक लो, हजूर पातशाह जी आए ने नाम देने वास्ते पर्ची कटा लो। कोई शक नहीं है कि डिग्री दे दिती है हजूर पातशाह जी ने, अमृत दी दात बख्श दिती गई है, क्यों कलगीधर पातशाह दा हुक्म है पूरन सतगुरु सन। पर उस तो बाद कदी असी ये विचार कीता है कि असी पढ़ाई भी करनी है, क्या उस दे नाल जड़े सानू उपदेश दिते गए सन उना दे विच कोई एक ऐसा उपदेश भी है सी कि तुसी अमृत छकण दे बाद नाम लैण दे बाद किसे भी तरीके दा कर्म करो, किसे दा भी गला छोटा करो, किसे दा भी जेब हलका करो, सारा दिन काम दे विच ही लिप्त रहो। काम दी की परिभाषा सतगुरु देणगे, पशु और पक्षी जड़े ने इस मनुख कोलो कई गुणा अगे ने, किस तरीके दे नाल उना दे मिलन दी एक रुत निश्चित कीती है प्रकृति ने। 12 महीनिया सिर्फ इको ही समा है जिसले बच्चा पैदा करने लिए एक दूसरे के नजदीक आंदे ने, और एक दो पैर वाले जानवर की तरफ देखो, जानवर क्यों लड़न की कोई जरूरत नहीं है, ये मजबूर है विचार करन दा। असी बेशक कहन नू इंसान हा पर हर रात सानू जो है मुंह काला करन लई तैयार बैठे हाँ, क्यों? क्योंकि असी मन दे एक विकार दे विच ग्रस्त हाँ। क्या ऐसा हजूर पातशाह जी ने हुक्म किया सी कि नाम लैण दे बाद तुसी कैसा भी कर्म करो गुरु दे हुक्म विच रहना है या मन दे विकारां दे अधीन कर्म करने ने? यानी कि कोई भी सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच भी कीता गया कर्म जड़ा मन दे हुक्म दे विच है, मन दी तरंग दे उत्पन्न करन दे विच असी उस दी अवसर पूरा करन लई कीता है, ते उस दा भुगतान नाल दे नाल ए जीवात्मा अपनी डे बुक आप लिखदी है। जिस नू चित्रगुप्त किया गया है ओ मन है, ओ मन ही ए लेखनी लिखदा है। किसी ने बाद विच बैठ करके कोई अदालत नहीं लगानी, कोई सिफारिश नहीं लगनी, कोई ऐसा उपराला नहीं होना कि उत्थे आ करके कोई सानू छुड़ा देगा या साडी जमानत देगा। उत्थे ते साडी गवाही किसने देनी है? इस मन ने देनी है कि इस जीवात्मा ने ए कर्म कीते ने और असी कर रहे हैं मन दे हुक्म नाल ते बच रहे हैं सतगुरु दी नजर तो। और एक पासे असी दावा करदे हां कि सतगुरों दा अमृत छक करके नाम लै करके वह साडे अंदर दे विच बैठ जांदे ने। ते विचार करके देखो अगर सानू यकीन है वह साडे अंतर दे विच बैठे ने ते फिर असी इतने गंदे कर्म नीचता दे पूरन ऐसियां भोग विलास दे विच कर्म किस तरीके दे नाल कर लैने हां? कौन सानू प्रेरित करदा है? इको ही प्रेरणा देंदा है मन। इसी करके बाणी विच कबीर जी ने कहा है साकत संग न कीजिए दूर जाइए भाग, वासन कारो परसिए ता कुछ लागे दाग। यानी के तुसी इस पैड़े संग तो दूर दौड़ जाओ, एक काले भांडे नू सिर्फ चुक करके असी दूसरी जगह ते रखिए ना ते उंगल काली हो जांदी है, सानू मल मल के धोनी पैंदी है। और ए जीवात्मा ने इस काले भांडे दा संग सदियां तो कीता है, जब तो ए सचखंड तो उतर के आई है इस मन दी संगत दे नाल इतनी मैली हो चुकी है कि अंदर परमात्मा मौजूद है, उस नू लभण लई उसने मिलन लई किसे भाणा जंगला जान दी लोड़ नहीं, किसी गुरुद्वारे मंदिर सत्संग कर जान दी जरूरत नहीं। ए सत्संग तुहाडे अंदर दिन रात हो रहा है, दिन रात तुनकारे दे रही है परमात्मा दी आवाज, उस जीवात्मा नू लैण वास्ते आई है। कदे असी इस जीवात्मा दे लई जो आवाज आई है कदी उस प्रकाश दे दर्शन नहीं कीते, कदी उस आवाज नू सुनन दा उपराला नहीं कीता। असी जदों भी सुनीए इस मन दी आवाज सुनीए, ए मन मैला है, मन काला है, मल साकत है। जिस जीवात्मा ने इस मन दे संग नू त्यागता ना उसका नाम लैणा सार्थक हो जाएगा, उसका अमृत छकना भी सार्थक हो जाएगा। बेशक ओ पानी है पर अगर सतगुर की मर्यादा दे विच आ गए तो बेशक है निवली कर्म है इस वक्त, पर इस निवली कर्म ने सानू ओ दात दे देनी है। विचार करके देखो संता दी जीवनियां नू पढ़ करके देखो, हजूर वड्डे महाराज जी सावन सिंह जी की तरफ देखो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ 16-16, 20-20 ਸਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਝੂਠੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਝੂਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਝੂਠੀ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋਤ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੂਪ ਪੁਕਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਜਨ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ 1, 2, 4 ਅਗਰ 36 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ 36 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਹਾ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਸੁੱਚੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਗਹਿਨ ਅੰਧਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਣੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਧਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੰਧੀ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੀਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਤਪੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਿਉਂ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ एक लख पूत सवा लख नाती तिस रावण कर दिया ना बाती, यानी कि ओदे कर दिया बाती देन वाला भी कोई ना बचिया। इतना बाग परिवार होने दे बाद वजह की सी, सिर्फ एक अभिमान हंकार आ गया उसके अंदर। सतगुरु उपदेश करते ने, कहते बेटा विचार करके देख, तू परमात्मा नु मिलन चलिया है, अपने अंदर झांक करके देख कितना झूठा है, कितने विकार तेरे अंदर गढ़ किते हुए ने, ऐसे ऐसे गहरिया नीयां इन्हां दीयां विच व्याप्त ने, सदियां तो ही तू इन विकारा दे विच रत है, ऐसे ऐसे भयानक कर्म तू कर करके बैठा है कि अगर एक कर्म भी तेन दे दिता जाए जिदा भुगतान करन वास्ते तेन कई करोड़ होर जन्म लेने पैणगे। ते विचार करके देख तेरी मुक्ति किस तरह होगी, तू इस जगत भी सुख लोड़ रहा है, इस जगत की हर वस्तु ने नष्ट हो जाना है, सब दी एक सीमा है, काल दी ये लीला है कि जो भी वस्तु इस जगत दे विच उत्पन्न करता है उसकी समय निश्चित हो जाता है, चाहे वो जड़ है यानी कि सूरज है, चंद है, तारे ने, या कि कोई भी भूमंडल है, या कोई भी चेतन चोला स्वरूप उसने दिता है जिस दे विच आत्मा नु कैद किया है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा के बाद उस सब वस्तुआ ने नष्ट हो जाना है। नष्ट होने की वजह है, जो ताकत सच पुरुष तो काल पुरुष नु प्राप्त होंगी है उसकी भी एक सीमा है, निश्चित सीमा करके उसनु ये ताकत समर्था दिती है, और एक नीमा दे अधीन एक खेड रचिया होया है, एक खेड चल रही है। और सतगुरु उपदेश करते ने, अगर तू मुक्ति प्राप्त करना चाहता है ना, आवागमन चो निकलना चाहता है, ते याद रखी कि नीमा दे अधीन ही तू निकल सकता है। किसी का पासपोर्ट ला करके किसी नु दिखांदा होएगा, ये चेक दिखाएगा ना जेड़े ब्लाइंड चेक ने, ते इना दिया डेटा तेरिया निकल चुकिया ने, ये चेक तू एक वेरी नहीं कई वेरी ले ने, जिसले तू नरकां दे विच बिखलांदा से ना, पिटदा से कर्म भोगदे होए, तेरी आवाज कोई नहीं सी सुनदा, उस वेले सतगुरु ने रहमत करके तेनू एक चेक दिता सी, जिसनु असी नाम कीर्तन आवाज या कि शब्द कहंदे आ, या अमृत कहंदे आ, या होर कई लफजा दे नाल गुरबाणी याद करदे आ, ये सारे ब्लाइंड चेक तेनू दिते सन, ये कैश कराण वास्ते दिते सन तेनू, यानी कि मनुखा चोला दिता सी, इस चोले दे विच आ करके तू इस शब्द नु सार्थक करना सी, इस चोले नु सार्थक करना सी, इस देही को सिमरे देव, असी देवी देवत्या नु पूजन लगे आ, ए भी एक भोगी जूना ने, इना ने भी जिसले इना दी उम्र खत्म होनी है, भोग खत्म होने ने, अच्छे कर्म खत्म होने ने, इना ने फिर 84 दे गेड़ भी चाना है। किशन जी ने गीता भी स्पष्ट किया है कि ये उदो ये जो कीड़ा देख रहे हो, ये कई बार ऊंची गति यानी कि कई बार ब्रह्मा, कई बार विष्णु, कई बार शिव जैसी ऊंची गति प्राप्त कर चुका है, अब ये कर्मों के अधीन एक नंदी नाली का कीड़ा बना हुआ है, यानी कि अगर तू 84 दे गेड़ चो निकलना चाहता है तो अपनी मन बुद्धि मेरे में स्थित कर, अपने प्राण मेरे में स्थित कर, मेरे को ही हर जगह व्याप्त देख, और मेरे अधीन किया हुआ कर्म और उसका फल मेरे को अर्पित कर, तभी तू निष्कामी होकर के इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। तब तू किसी को मारता हुआ भी किसी को मारता नहीं, यानी कि तू उसके फल से मुक्त है, यानी कि तेरी जीवात्मा तभी मुक्त प्राप्त करेगी, तभी तू मेरे इस निज स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। इतना ज्ञान देने दे बाद भी एक मनुख अर्जुन जो कि खुद अवतार स्वरूप सी, वो किशन जी दे उपदेशों के ऊपर पूरा नहीं उतरिया, उसने हथियार नहीं सी चुके, और उसके बाद की कीता सतगुरु ने, उस वेले उन्होंने अपने असली रूप यानी के विराट रूप दे उसनु दर्शन कराए, यानी एक मनुख जो कि अवतार स्वरूप सी उसनु मनान वास्ते उस परमात्मा जिन्हों असी भगवान श्री कृष्ण कहंदे आ उन्होंने असलियत दिखाई अपनी, तद जा करके उसने हथियार चुके सी और अपना वो कर्म किया जिस दे लई सतगुरु ने हुक्म किया सी। ते विचार करके देख लो असी इत्थे बैठे आ किस हंकार और किस भरम दे विच बैठे आ कि असी सतगुरु को नाम लै लिया या अमृत छक लिया ते सानू मुक्ति हो जाएगी, यानी कि एक अवतार नु मनाण वास्ते भगवान नु एक गीता दी रचना करनी पई, और गीता दा ऐसा विशाल ज्ञान कोई भी जीवात्मा एक जन्म दे विच उस पूरे ज्ञान नु प्राप्त कर ही नहीं सकती, उसका इतना गूढ़ा ज्ञान है आत्मा दे मुतलक। इस काल और दयाल दे मजमून नु अच्छे अच्छे संता ने, वड्डे महाराज जी ने एक जगह तो कुचारी है कि ये एक ऐसा गहरा भेद है कि इस दे विच खोज दी अजे होर लोड़ है, ये पूर्ण सतगुरां दे उपदेश ने, ते उस नु असी क्या एक छोटा जा सर्टिफिकेट लै करके ते आवागमन तो मुक्त हो जावांगे, इस मन दे हुक्म चो निकल जावांगे। ये सारियां चालां जो मन ने रचियां हुई ने इस जीवात्मा नूं परमाण लई, क्या इन्नी जल्दी असी निकल जावांगे? असी पल पल साध संगत जी काल दे मुंह दे विच जा रहे हां। काल दा सिकंजा हर पल हर घड़ी इस गर्दन दे उपर टाइट हो रहा है। हर पल असी काल दे मुंह जा रहे हां, और साडे वास्ते जिहड़े चोले ने किसी आर्डर दे करके नहीं बनवाए गए। जिस तरह असी इस लोक दे विच कोई चोला बनाना होवे, बहुत सारे चोले ते असी आर्डर देने आ किसी कंपनी नूं फर्म नूं वी इस साइज दे इतने चोले बना दिते जान, वो फर्म बना करके सानू सप्लाई कर दी है। पर काल दी लीला इतने सूक्ष्म और एटोमैटिक तरीके दे नाल रची है कि ए चोला जीवात्मा अपने हथी सींदी है। इस परम चो निकल जाओ कि किसी होर ने सानू चोला देना है, और इन्हां भोगां दे विच कीते गए कर्मा दा भुगतान सतगुरु कर देणगे। विचार करके देखो, एक टीचर अपने स्टूडेंट नू की घोल के देंदा है, उहदे जेब दे विच केड़ा ऐसा फार्मूला पा देंदा है कि वह अगली क्लास दे विच चढ़ जांदा है? कुछ भी नहीं देंदा। सिर्फ अगर देंदा है तो नियम देंदा है, उपदेश देंदा है, हुक्म देंदा है। और स्टूडेंट नू अगर कोई हुक्म है, छूट है, तो सिर्फ 24 घंटे दिन रात उस हुक्म नू अमली जामा पहनाण दे, इतनी छूट है। इस तो अगे कोई भी छूट नहीं है, कोई छूट रूहानियत दे विच है। टीचर जो सतगुरु नू आंदे ने, वो हक दा जो हुक्म देंदे ने, उपदेश देंदे ने, शिष्य नू सिर्फ कि वो 24 घंटे हर पल उपदेश दे उपर अमल करे। उस दे बाद सारा भुगतान इस जीवात्मा नू चाहे रो के दवे, चाहे हस के दवे, चाहे एक जन्म विच भुगता ले, चाहे करोड़ा जन्मा च भुगता ले, ये सारे भरम चो निकल जाओ। ये सारे भुगतान जड़े स्वाद इस जीवात्मा ने मन दे राही, मन दे अधीन, मन दे हुक्म विच लगाए ने। इना दे भुगतान कई करोड़ जन्मा दे विच, कई निचलियां जामियां दे विच जा करके देने पैणगे। ये सारा भरम जो है ये मन दा खड़ा कीता होया है। ये मजमून इतना सस्ता और इतना आसान नहीं है कि असी निकल जाइए। सो बाणी दे विच जो उपदेश सतगुरु करदे ने, ओ एही करदे ने कि इस दा मिलन जो है आत्मा दा परमात्मा दे नाल, उस दे विच एक आधार है, एक कड़ी है। यानी कि आत्मा अंधी और बोली है, अखां चाहीदियां ने। अखां किदियां ने? अखां सिर्फ और सिर्फ सतगुरु दियां ने। क्यों? क्योंकि जिस तरह इस काल ने अपनी आवागमन 84 लाख पिंजरिया नूं पक्का करन वास्ते 84 लाख पिंजरे उसने बनाए ना, ते अपने अवतार भेजे ने। किशन जी ने एक जगह स्पष्ट किया है अर्जुन नूं उपदेश देंदे होए, कहंदे ने हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मेरे को तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त है। यानी कि मैं तीनों लोका दा स्वामी हाँ, त्रिलोकी नाथ हाँ, आमी कालासमी, मैं ही काल हूँ। पर उसके बाद भी मैं इस जगत दे विच जदों भी मनुख रूप दे विच आंदा वा, ते मैं अपने पिता दे पैरां नूं छूंदा वा, भाइयां भैणां दी सेवा करदा वा, जगत दा उद्धार करदा वा, और कई तरीके दे अच्छे कर्म करदा वा। उसकी की वजह है? सिर्फ इस करके कि तुम भी ऐसा ही आचरण करो। यानी कि सतगुरु बेशक वो काल दी लीला सी, लीला दिखाण आए सन, पर सच नूं छुपा नहीं सी सकदे। एक अहंकार चो निकल जाओ। इन्हां दी निंदिया करन दा कोई लाभ नहीं। असी इस मजमून नूं समझना है। ये भी एक ईश्वरी ताकता ने, बेशक निचले मंडला दिया ने, पर ईश्वरी ताकता ने, इस करके सच ने। अगर असी इन्हां ताकता नूं भी प्राप्त करना चाहते हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण नूं प्राप्त करना चाहते हाँ, भगवान श्री राम नूं प्राप्त करना चाहते हाँ, तो याद रखना, निंदा करके नहीं, सच्चे होकर के, अपना वो करैक्टर ला करके, जो करैक्टर ला करके इस जगत विच आए सन। असी श्री रामचंद्र जी नूं की कहंदे हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके ही असी इस राम नूं प्राप्त कर सकते हाँ। किसी मूर्ति नूं भोग लगा करके या मथा टेक करके असी इस संकार च बैठे हाँ कि असी श्री रामचंद्र जी नूं खुश कर रहे हाँ, ते साडा परम है। जो वेदा दे विच ज्ञान है, वह ब्रह्म की बाणी का ज्ञान है। वह ब्रह्म की बाणी ओही बाणी है जो सचखंड तो बाणी आई है। ये बाणी अलग अलग मंडलों के विच, अलग अलग मंडलों के जो रूपरेखा बनाती हुई 10वें द्वार जा करके दिन रात तुनकारे दिंदी है। होर 84 लाख पिंजरिया दे विच असी इस आवाज नू प्राप्त नहीं कर सकते। अगर असी मुक्ति चाहते हां, इस आवाज नू मिलना चाहते हां जो सानू तुर दरगाह ले जाण वास्ते आई है, तो उहदे वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक मनुखा जन्म है, मनुखा चोला है। ये जीवात्मा अंधी और बोली है, इस करके अखां चाहीदियां ने। जिस तरह उस काल ने अपने 24 अवतार इस जगत विच भेजे अपनी आवागमन पक्का करन वास्ते, इस जीवात्मा नू परमाण वास्ते, ये जितने भी अवतार सन ये जीवात्मा नू परमा करके गए ने। परमाण दा की भाव है कि आवागमन दे कर्म करवाण वास्ते, यानी कि जो जगत दे मुतलक कर्म है या प्रीत है, मां दे मुतलक, प्यो दे मुतलक, तिया पुत्र जमीन जायदाद दे मुतलक, ये सारी प्रीत पक्की करके गए ने। और ये प्रीत पक्की करके आवागमन दे चोले पक्के करा करके गए ने। सो इसी मजबून नू, इसी भ्रम नू दूर करन वास्ते सचखंड तो वो सतपुरुष ने अपनी समर्था दे करके संत सतगुरु जो ने इस जगत विच भेजे ने, उना दे विच वो सतपुरुष की पूरी समर्था हुंदी है, पूरी ताकत हुंदी है, वो इस जीवात्मा नू इस भ्रम चो कढ़न वास्ते आंदे ने। पर सब तो असल जल जो है जड़ी सानू समझ नहीं आंदी, असी संतां नू की समझदे हां, असी उना नू इक देह समझ करके भुल जांदे हां। यही सब तो वड्डा भ्रम है कि संत की ने वो हुक्म दे विच आंदे ने, क्योंकि काल ने इस खेल नू रचन वक्त जो है एक वर जड़ा लिया सी शुरू च, पहले सतगुरां ने स्पष्ट करता है, एक वर ए भी सी कि संत जो ने अपनी समर्था नू प्रदर्शित नहीं करनगे। सो इस प्रदर्शित ना करन दा जो हुक्म है, संत इस दी पूरी पालना करदे ने। और जीवात्मा जो है मन दे हुक्म विच आ करके संतां नू सिर्फ एक मनुख या एक देह समझ लैंदी है, पर साध संगत जी उना दे अंदर 16 सूरज प्रगट हुंदे ने, और उस दे अलावा वो अथाह समुंदर जिसनू असी सचखंड दा मालक सतपुरुष कहंदे आ, जो निश्चल और अविनाशी मुल्क है, उसकी पूरी समर्था जो है पूर्ण सतगुरां दे अंदर मौजूद हुंदी है। और जड़ी जीवात्मा मेहनत करके सतगुरां दे हुक्म दे विच कुर्बान हो करके सचखंड पहुंच जाती है, वह भी संत की पदवी का अधिकारी हो जाती है। पर उस दे बाद भी वह ट्यूशन तो पढ़ा सकती है, पर संत सतगुरु नहीं बन सकती। संत सतगुरु की पदवी सिर्फ और सिर्फ उस संत नू प्राप्त होंदी है जड़ी सतखंड ते पहुंच जाते ने, पर सतपुरुष के हुक्म और समर्था और उसकी कलम लै करके, कलम का भाव है कि जो उन्होंने मुखार बिंचो जो सूक्ष्म तो सूक्ष्म तरंग भी उत्पन्न होंदी है, उन्होंने मुखार बिंचो निकल करके साडे कन्ना दे विच टकरांदी है ना, वो टकराए गए लफज जो ने नाम शब्द कीर्तन कहलांदे ने। सो जो नाम की परिभाषा असी लै करके बैठे हाँ, वो बड़ी अधूरी परिभाषा है। और जो परिभाषा सतगुरु इस वक्त सचखंड तो सानू दे रहे ने, वो परिभाषा इस परिभाषा दे अंदर पूर्ण फिट हो जाएगी, अजमा करके देख लो। इस करके जो नाम और शब्द की परिभाषा है वो सिर्फ और सिर्फ ए है कि पूर्ण सतगुरु जो भी प्रगट होंदे ने वो डंके की चोट ते होंदे ने। डंके की चोट का की भाव है कि वो इस खेल जो कि काल ने रचिया होया है सदियां तो ही, सानू आज तक समझ नहीं आया, पर वो डंके की चोट ते लखा करोड़ा आदमियों के सामने प्रगट करते ने। क्यों प्रगट करते ने? क्योंकि उन्होंने वो जीवात्मा जो तड़फ रही ने अपने मूल दे भी समान वास्ते, इस जगत की हर वस्तु झूठी है तो उसका अंत जो है सुखदायक किवें हो सकता है। सो अगर असी उस परमात्मा नू प्राप्त करके सदा लई सुखी होना चाहते हाँ, तो जो सतगुरां दे मुखार बिंद चो हर सूक्ष्म तरंग उत्पन्न हुई है ना, जो लफज बन के साडे कन्ना नाल टकराई है, उसनू अमली जामा पहनाना पेगा। इसनू जो है नाम किया जाता है, इसनू शब्द किया जाता है, और असी 2-4 तरंगा नू लै करके नाम समझ के बैठे हाँ, ये साडी बहुत वड्डी भुल है। और जड़े अमृत दा बाटा छक करके ये समझ करके बैठे ने कि जड़ियां 5 रायतां सानू दे दित्तियां ने, सिर्फ उन्हां रायतां नू पूरा करके उस दे अलावा असी जो मर्जी कर दे रही है, पूरन सतगुरु सचखंड दे विच अख बंद करके बैठे ने, ते ओ भ्रम दे विच बैठे ने। ओ पानी दा पानी रहेगा, अगर असी उसनू अमृत बनाना चाहते हैं ना, तो उस दे लई सानू सतगुरां दे हर सूक्ष्म तरंग नू अमली जामा पहनाना पेगा। और अमली जामा किस तरीके नाल पहनाया जाएगा? अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी दे विच 24 घंटे हर पल हर घड़ी ए बार दा जो नाम है ना, इस नू जपांगे। ए जपया किस तरह जाएगा? अपनी किरिया करके, जो किरिया असी मन दे अधीन होकर के मन दे विकारा दे हुकम दे विच आ करके करदे आ ना, ओ सानू सतगुर दी तरफ ख्याल पक्का करके हर पल हर घड़ी सिर्फ उतना ही जितना नू सानू हक दी हुकम है। असी हक किनू कह रहे हैं 50% 100%। साध संगत जी असी 2 रुपए लगा करके 200 बनान लगे हुए आ। किसी जमाने दे विच 2-2, 4 करन वास्ते अच्छा बिजनेसमैन कहंदे सी, पर अज उस नू मूर्ख कहंदे ने। अज अकलमंद किनू कहंदे ने, जिहड़ा 200 दे 200 बनांदा है। ते विचार करके देख लो ये 198 किस खाते च जाणगे, क्या सतगुरु अपने झोली च पा करके लै जाणगे, किस भरम च बैठे आ। जितना हक परिवार दे हिसाब नाल सानू चाहीदा है ना, यह हक लाल दी कमाई। क्या सतगुरां ने सानू हुक्म नहीं सी दिता जिसले नाम बख्शिया सीगा कि अपना हक खाना है? हक पराई नानका उस सूअर उस गाई, यानी किसे दा हक मार करके लै आए आ ना। हिंदू लई गां खाण दे बराबर है और मुसलमान लई सूर, और एक गां और सूर असी रोज ही खा रहे हैं मार मार के। कदी विचार करके देखिया असी केड़े अंकार, असी मार छड दिता, शराब छड दिती, असी नाम लै लिया है। ओ नाम लैण दे बाद कदी असी उनू सुच्चा कीता है? असी इस मनुख दा मास और इसका रत पीण लगे है। किस तरीके दे नाल? जिस तरह असी दूसरे का जो हक मार के अपने घर टेबल दे उपर बैठ करके टाई लगा करके सारा परिवार रज करके खांदा है ना, दूसरे दे मारिया होया हक वो इंसान दा मास और खून दे पीण दे बराबर है। तो जो असी खाण दा परहेज कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी गल है, कुछ कर्म नहीं बनणगे। पर जब तक असी रत पीवे मानसा, जब तक मनुख दा रक पीना असी बंद नहीं करांगे, पराया हक का मारना बंद नहीं करांगे ना, ये लफज कदे भी सार्थक नहीं होणगे। ये 5 तरंगा ने, सिर्फ 5, ते सतगुरु दे मुखार बिंचो हर पल हर घड़ी तिरंगा उत्पन्न हो करके लफज बन करके साडे कन्ना नाल टकरा रही ने, सानू अज तक सुनाई नहीं दिता। सो बार दा जाप की है? ये बार दे नाम दा जप अमली जामा पनाना हर पल हर घड़ी। और अंदर दा की भुगतान है? अंदर दा जप की है? अंदर दा जप किस तरह करना है? वो जो 5 तिरंगा 2 तिरंगा 1 तिरंग, ये सतगुरु की अपनी मौज है। वो किसनू कितने शब्द देंदे ने, इन्हां तिरंगा नू अमली जामा पहनाना, ये है अख बंद करके अंदर दा जाप करना। पर ये याद रखना, अंदर दा जाप तां पूरा होएगा जदों बाहर दा जाप पूरा हो जाएगा। और अगर जब तक बाहर दा जाप पूरा नहीं ना होया, ते ये कितना भी दौड़ भज कर लो, कितने भी उपराले कर लो, किनिया भी कसमां झूठियां खा लो, झूठे अमल करे, यानी कि अगर खुदा दा नाम लेना और नाम खुदाई का, दिल अच्छे मुख ले, यानी कि सच्चे हिरदे दे नाल और सच्ची जबान दे नाल, अगर इस लफज सच्चे ने, असी की कहंदे आ? हंकार दे विच गोते लगांदे आ। सतगुरां ने शब्द दिते ने बड़े ही सुच्चे ने, कोई शक नहीं साध संगत जी, पूर्ण सच्चे और सुच्चे ने। पर अगर ये तां सार्थक होणगे जे सुची जबान दे नाल ना लिया जाएगा। असी इनू झूठी जबान दे नाल जप रहे हां, झूठे हिरदे नाल जप रहे हां, अंदर दे विच विशे विकारा दी अग बल रही है, और ऐसी अग लै करके और ऐसी जबान जिहड़ी हर पल हर घड़ी किसे दी निंदा करन तो बाज नहीं आंदी, झूठे कर्म करन तो बाज नहीं आंदी। ते विचार करो, ये सच्चे शब्द सानू कित्थे लै जाणगे, वो नाम कित्थे लै जाएगा, सतगुरु की करणगे? वो ते आंदे ही ताले खोल देंदे ने, पर की करण? ये जो अंदर कैदी ने रंग तमाशिया च मस्त होए ने, उन्हां नू इतनी भी होश नहीं है कि ये कैद खाने दा ताला खुल चुका है, दौड़ जाइए, आवागमन तो मुक्त हो जाइए, इस मनुखे जन्म नू सार्थक कर लईए। पर असी भ्रम दे विच बैठे हां, इस माने ने सानू परमा रखिया है। तो साध संगत जी, अगर असी इस मजमून नू समझना चाहते हां, आवागमन तो निकलना चाहते हां, इस नाम दे उपर जिन्ना सानू हंकार है, अपने सतगुरु दे उपर मान है, ते ए सच्चा करना चाहते हां, ते पहले सब तो बाहर दा जप पूरा किया जाए, उस तो बाद अंदर दा जप किया जाए, उस तो बाद भी सतगुरु दी अपनी मौज है, अपनी प्रसन्नता है, अपनी नजर है, अपनी मेहर है, अपनी रहमत है, कि जिस जीवात्मा नू चाहण अपने नाल मिला लैण, जिस नू चाहण अपने तो दूर कर देण। यानी कि दोनों ही मजबूत स्पष्ट ने कि जिथे जीवात्मा नू उदम करन दा उपदेश है, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਚਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਪਕਰਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਿਲਣ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਿਲਣ ਯਾਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ